ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को सीवान और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने आज बांका, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर और गोपालगंज समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण के तहत राज्य के 5 संसदीय क्षेत्रों सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर संसदीय क्षेत्रों में 20 मई को मतदान होना है। पांचवें चरण में 95 लाख से अधिक मतदाता, 6 महिला प्रत्याशियों समेत 80 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे अधिक 26 प्रत्याशी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 12 प्रत्याशी मधुबनी संसदीय क्षेत्र में हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, सारण और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्रों में 14-14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में 9,436 बूथों की स्थापना की है। औसतन 1,008 मतदाता प्रत्येक बूथ पर मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में प्रचार अभियान अपने चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आज सीवान संसदीय क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी विजयालक्ष्मी देवी के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री सरमा कल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महाराजगंज और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभाओं में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी संयुक्त रूप से सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और सारण लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को सीवान और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। श्री मोदी सीवान के कोरिया कोठी और बेतिया के बड़ा रमना मैदान में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल बेतिया में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों से 12 महिला समेत 134 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल नामांकन वापसी के अंतिम दिन 4 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। जहानाबाद लोकसभा सीट से 2 और बक्सर तथा काराकाट संसदीय क्षेत्रों से 1-1 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। नालंदा संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 29 उम्मीदवार जबकि सासाराम में सबसे कम 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं पाटलिपुत्र से 22, पटना साहिब से 17, जहानाबाद से 15, आरा और बक्सर से 14-14 तथा काराकाट संसदीय क्षेत्र से 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। अग्यों विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। आज उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। मतदान 1 जून को होगा। भाजपा ने सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर अपने हलफनामे में कई तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी संजय ने कहा कि राजद उम्मीदवार ने हलफनामे में अपनी नागरिकता, पासपोर्ट और आवासीय स्थिति से संबंधित तथ्यों को छुपाया है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इन मामलों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। श्री संजय ने कहा कि रोहिणी आचार्य पिछले 7 वर्षों से दूसरे देश में रह रही हैं, इसलिए उनकी नागरिकता पर अस्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजद प्रत्याशी के नामांकन को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता ने कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया है। और अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात बक्सर लोकसभा सीट की। बक्सर बिहार के उन 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
बिहार के पश्चिम भाग में गंगा किनारे स्थित बक्सर का इतिहास युद्ध और धार्मिक महत्व का रहा है। सियासी रूप से भी बक्सर अपनी अलग पहचान रखता है। 1952 में अस्तित्व में आया बक्सर लोकसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। समय के साथ यहाँ वामपंथी दलों ने भी अपनी पकड़ बनाई। कालांतर में यह सीट भाजपा का गढ़ बन गया। पार्टी के लालमनी चौबे ने वर्ष 1996 से 2004 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2009 में राजद के जगदानंद सिंह इस सीट से निर्वाचित हुए। वहीं वर्ष 2014 और 2019 में के लोकसभा चुनाव में बक्सर से भाजपा के कद्दावर नेता अश्विनी कुमार चौबे को जीत मिलती रही। हालांकि इस बार पार्टी ने उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। श्री तिवारी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का वर्ष 2015 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं राजद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। श्री सिंह वर्तमान में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र से पूर्व मंत्री ददन पहलवान और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आनंद मिश्रा भी चुनाव मैदान में है। आनंद मिश्रा की छवि एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में रही है। वे मूल रूप से भोजपुर जिले के परसौड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस बार बक्सर सीट पर प्रमुख 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के उतरने से मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। विधानसभावार स्थिति देखें तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों पर विपक्षी गठबंधन का कब्जा है। ब्रह्मपुर रामगढ़ और दिनारा से राजद के विधायक हैं, जबकि बक्सर और राजपुर पर कांग्रेस तथा डुमराव विधानसभा क्षेत्र पर भाकपा माले का कब्जा है। विधान का कटोरे के रूप में विख्यात रहे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि आधारित है। भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और मोदी की गारंटी के नाम पर लोगों को जन समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह समेत निर्दल ददन पहलवान और आनंद मिश्रा आसानी समस्याओं को लेकर मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताती है। आकाशवाणी समाचार के लिए बक्सर से शशांक शेखर।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIRNews_Patna पर भी सुने जा सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विश्वविद्यालयों की ओर से दायर 11 मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि बजट जारी नहीं किए जाने की स्थिति में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही न्यायालय ने 3 विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर शिक्षा विभाग की पाबंदी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। 43.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ अरवल राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बांका, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर और गोपालगंज समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में बेंच डेस्क की आपूर्ति कर रही एजेंसियों पर 27,29,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। आपूर्ति की गई बेंच डेस्क की जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही विभाग ने 2 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ऑनलाइन होने वाली परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। पेपर वन की परीक्षा 29 मई तक जबकि पेपर टू की परीक्षा 20 जून तक चलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंकों के सत्यापन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय में 20 मई से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार 18 जून तक अवकाश रहेगा। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ग्रीष्मकालीन बेंच सोमवार से गुरुवार तक काम करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। संग्रहालयों के प्रति लोगों को जागरूक करने और इनकी अहमियत बताने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है शिक्षा और शोध के लिए संग्रहालय। इस अवसर पर राज्य के प्रमुख संग्रहालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आज दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर कल हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। पटना के कच्ची दरगाह गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से दो चचेरी बहनों की मौत हो गई। वहीं मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में तालाब में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, शिक्षा विभाग राशि दे वरना अफसरों का वेतन बंद होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, आधी नींद और खाली पेट स्कूल जा रहे मासूम, झुलसा रही गर्मी। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बिहार और गुजरात के माफियाओं ने मिलकर नीट का पेपर लीक किया। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना के एक स्कूल में स्लाइडर से गिरे छात्र को मरा समझ क्लास के गटर में फेंका, सुबह मिली लाश, प्रिंसिपल और बेटा गिरफ्तार। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 20 मई को संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित। आज अखबार की प्रमुख खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमला, युवक ने मारा थप्पड़। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को सीवान और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं करेंगे। पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्वीकृत बजट का पैसा 10 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने आज बांका, नवादा, पूर्णिया, भागलपुर और गोपालगंज समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।